योएल का ग्रंथ और लाओदिकियाई सप्तम दिवसीय एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या 42
संख्या 42
जब लैव व्यवस्था 30 को 22 पदों की दो समान रेखाओं में विभाजित किया जाता है और उसे मसीह की उस रेखा के साथ संयोजित किया जाता है जहां वसंत के पर्व अपने प्रतिरूप से मिले थे, तब हम ऐसी रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं जो तीन चरणों से आरंभ होती है। शुक्रवार की संध्या का फसह, सप्त के दिन अखमीरी रोटी का पर्व और सप्ताह के प्रथम दिन पहिलौठे फल का पर्व। ये एक मार्ग चिन्ह है जैसा कि मसीह के बपतिस्मा द्वारा निरूपित है, परंतु उस एक मार्ग चिन्ह के तीन चरण हैं।
जब हम पुनरुत्थान से आरंभ कर 40 दिन आगे बढ़ते हैं, तब हम एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं, क्योंकि उसी समय मसीह ने प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना समाप्त किया और बादलों में आरोहित हुए। 144,000 भी बादलों में आरोहित होते हैं।
और उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ी आवाज सुनी जो उनसे कहती थी, यहाँ ऊपर आओ। और वे बादल में होकर स्वर्ग पर चढ़ गए और उनके शत्रु उन्हें देखते रहे। और उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का दसवां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप में 7,000 मनुष्य मारे गए, और जो शेष रह गए थे वे भय से भर गए और उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर को महिमा दी। दूसरा हाय बीत गया, देखो तीसरा हाय शीघ्र आता है। फिर सातवें स्वर्गदूत ने नरसिंगा फूंका और स्वर्ग में बड़ी बड़ी आवाजें हुईं जो कहती थीं, जगत के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य हो गए हैं और वो युगानुयुग राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 11:12-15।
दूसरा और तीसरा हाय इस्लाम है और सातवां स्वर्गदूत तीसरा हाय है जो कि पुनः इस्लाम ही है। तीसरा हाय भूकंप के समय शीघ्र आ पहुंचता है। वह भूकंप संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार का कानून है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकाशित वाक्य 13 का पृथ्वी का पशु है और रविवार का कानून वाकंप है जो कि भूकंप है। पृथ्वी का पशु 10 राजाओं में प्रधान राजा है और जब रविवार के कानून पर संयुक्त राज्य अमेरिका उलट दिया जाएगा तब नगर का दसवां भाग गिर चुका होगा। उसी घड़ी रविवार के कानून की घड़ी में इलिया और मूसा द्वारा निरूपित दो गवाह, वही दो गवाह जो मसीह के साथ रूपांतरित होकर पतरस, याकूब और यूहन्ना के सम्मुख प्रकट हुए थे, एक बादल में स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं और सब उन्हें देखते हैं क्योंकि उनके शत्रुओं ने उन्हें देखा।
पुनरुत्थान के 40 दिन बाद यीशु बादलों में स्वर्गारोहित हुए और ऊपरी कोठरी में 10 दिनों का आरंभ हुआ। स्वर्गारोहण एक दृश्य परीक्षा है जैसा कि तीन स्वर्गदूतों में से दूसरा भी है। अपने स्वर्गारोहण के समय स्वर्गदूतों ने कहा कि वो बादलों सहित लौटेंगे जैसे वो अभी अभी बादलों सहित स्वर्गारोहित हुए थे।
और जब वो ये बातें कह चुका तो वे देखते ही रहे कि वो ऊपर उठा लिया गया और एक बादल ने उसे उनकी दृष्टि से ओझल कर दिया। और जब वो ऊपर जा रहा था तब वे एक टक स्वर्ग की ओर निहार रहे थे और देखो श्वेत वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास आ खड़े हुए, जिन्होंने कहा, हे गलील के पुरुषों, तुम स्वर्ग की ओर निहारते क्यों खड़े हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है उसी प्रकार आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते हुए देखा है। प्रेरितों के काम 1:9-11।
अपने द्वितीय आगमन में वे अपने राज्य की महिमा में पुनरागमन करते हैं।
अतएव जो कोई इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी में मुझसे और मेरे वचनों से लज्जित होगा उसे मनुष्य का पुत्र भी लज्जित होगा जब वो अपने पिता की महिमा में पवित्र स्वर दूतों के साथ आएगा। मरकुस 8:38।
यही वही महिमा है जिसे पतरस, याकूब और यूहन्ना ने रूपांतरण के पर्वत पर देखा था। रूपांतरण का पर्वत भी दूसरा चरण था जिसके पहले कैसेरिया फिलिप्पी और जिसके चरण बाद कैसेरिया मैरितिमा थे। दूसरा परीक्षण पशु की प्रतिमा का परीक्षण भी है, ऐसा परीक्षण जो इस भविष्यवाणीगत पहचान की अपेक्षा करता है कि पशु की प्रतिमा बन रही है। दूसरा परीक्षण ये भी है कि मेलजार दानियेल और उसके साथियों का निरीक्षण करता है ताकि उनकी मुखाकृतियों की तुलना उन लोगों से करे जिन्होंने दलहम नहीं खाया। ये एक दृश्य परीक्षण है। अब्राम की वाचा इतिहास के 3 वाचा चरणों में दूसरा चरण खतना का चिन्ह था।
दूसरा चरण परमेश्वर की प्रजा की मुहरबंदी का प्रतिनिधित्व करता है जब उन्हें ध्वज के समान ऊंचा उठाया जाता है। दूसरा चरण वही है जहां महिमा प्रकट होती है, क्योंकि प्रथम स्वर्गदूत के तीन चरण हैं, भय, महिमा और न्याय। पिंतेकुस्त के काल का 40वां दिन रूपांतरण के पर्वत से मेल खाता है। अपने जूते उतारो क्योंकि तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो।
स्वर्गारोहण एक दृश्यात्मक परीक्षा है और उत्सवों की श्रृंखला में 40वें दिन निर्धारित स्वर्गारोहण से 5 दिन पूर्व तुरहियों का पर्व आता है। तुरहियों का पर्व 7वीं तुरही की चेतावनी को चिन्हित करता है, जो इस्लाम के विषय में चेतावनी है।
आरोहण नरसिंहों के 5 दिन पश्चात आता है और फिर आरोहण के 5 दिन बाद प्रायश्चित्त का दिन न्याय को चिन्हित करता है। नरसिंह प्राचीन मार्ग है, वो लाओडिकिया का संदेश है, वो इस्लाम है और वो प्रथम स्वर्गदूत का आधारभूत संदेश है। 5 दिन बाद जब आमने सामने की शिक्षा समाप्त होती है, तब दूसरे स्वर्गदूत की दृश्य दूसरी परीक्षा आरोहण द्वारा चिन्हित होती है। उसके 5 दिन पश्चात न्याय तीसरे स्वर्गदूत को चिन्हित करता है।
परमेश्वर के घराने पर न्याय के समाप्त हो जाने के 5 दिन पश्चात पिंतेकुस्त के दिवस द्वारा चिन्हित समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका पर न्याय आता है
और उसने अब्राम से कहा, निश्चय जान कि तेरी संतान ऐसे देश में परदेशी होगी जो उनका नहीं है, और वे उनकी सेवा करेंगे, और वे लोग उन्हें 400 वर्ष तक सताएंगे, और जिस राष्ट्र की वे सेवा करेंगे उस पर मैं न्याय करूंगा, और उसके बाद वे बड़ी संपत्ति सहित निकल आएंगे। उत्पत्ति 15:13-14।
रविवार के कानून के समय जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र का न्याय होता है, 144,000 के पास जो महान सार तत्व है, वही यशायाह के 6 अध्याय का सार तत्व है जो दैवत का प्रतिनिधित्व करता है। अब्राहम की वाचा संबंधी भविष्यवाणी कहती है उस राष्ट्र को भी, और इस प्रकार ये स्पष्ट करती है कि परमेश्वर की प्रजा पर रविवार के कानून से पूर्व ही मुहर कर दी जाती है। तब रविवार के कानून के समय, जो मंडपों के पर्व के 7 दिनों द्वारा निरूपित एक अवधि है, पश्चात वर्षा अपरिमित रीति से उंडेली जाती है, उसी समय जब परमेश्वर के घर के बाहर स्थित महान जनसमूह पर न्याय पूरा किया जाता है।
18 July 2018 को सदोम और मिस्र की सड़कों पर 2 गवाहों का वध किया गया। वे 2 गवाह मूसा और एलिया थे, और विलियम मिलर अपने इतिहास का एलिया था। अपने स्वप्न में उसने क्षण भर के लिए आंखें मूंद ली और 18 जुलाई 2018 को उसने भविष्य सूचक रीति से मृत्यु में अपनी आंखें मूंद ली। जब उसने आंखें खोली तो कक्ष रिक्त था, एक द्वार और खिड़ियां खुली थीं। तब मिलर ने धूल ब्रश वाले मनुष्य द्वारा संपन्न हो रहा कार्य देखकर उससे विनती की कि वो सावधानी बरते, और उस धूल ब्रश वाले मनुष्य ने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब मिलर जुलाई 2023 में वन्य प्रदेश में जाग उठा, तब खमीर रहित रोटियों का पर्व आ पहुंचा, ठीक 31 दिसंबर 2023 के पुनरुत्थान से पहले। उसी समय सत्य मध्यरात्रि के आह्वान का भविष्यवाणी संदेश, वो पुकार जिसका प्रतिरूप अब तक अमुहरित हुए प्रत्येक अन्य भविष्यवाणी संदेश ने प्रस्तुत किया था, अमुहरित होने लगा, क्योंकि 3.5 दिनों का अंत एक अंत के समय को चिन्हित करता है, और अंत के समय में सदैव एक भविष्यवाणी संबंधी मुहर खुलना होता है। यह सदैव ऐसा ही होता है, क्योंकि मसीह कल, आज और युगानुयुग एक ही है। मनुष्यों के साथ उसके व्यवहार सदा एक से है, क्योंकि वो अब भी उन्हीं रेखाओं पर कार्य करता है जिन पर वो सदा करता आया है। 3.5 दिनों के अंत में यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य अमुहरित हुआ। पुनरुत्थित देह का पूर्वचित्र आदम में था, जो पहले रचा गया और फिर उसमें जीवन श्वास फूंकी गई। येजकेल साथी की मृत सूखी हड्डियां भी पहले एक भविष्यवाणी द्वारा गठित की गईं और उसके पश्चात दूसरी भविष्यवाणी द्वारा, जो चारों पवनों के संदेश अर्थात मुहरबंदी के संदेश के द्वारा उस निर्जीव देह में जीवन श्वास लाती है, उन्हें जीवित किया गया। दोनों दृष्टांतों में खोली गई भविष्यवाणी 2 भागों में है, जिन्हें विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। वे आंतरिक और बाह्य हैं, वे उलाई और हिद्देकेल नदियों का दर्शन है
वे हाजोन और मारे के दर्शन हैं, वे दो साक्षी, दो सोने की नलिकाएं आदि हैं।
मिलरवादी इतिहास में मध्यरात्रि का आह्वान वह भविष्यवाणी थी जो दूसरे स्वर्गदूत की भविष्यवाणी के साथ संयुक्त हुई। ये एक द्विचरणीय भविष्यवाणी थी। जब मृत सूखी हड्डियां सन 2023 में पुनरुत्थित हुईं, तो भविष्य सूचक अनिवार्यता के अनुसार उनका परीक्षण किया जाना आवश्यक था, क्योंकि किसी भविष्यवाणी का उन्मोचन सदैव तीन चरणीय परीक्षा प्रक्रिया का आरंभ करता है। प्रथम दो परीक्षाएं, पहली आधारभूत परीक्षा और फिर मंदिर की परीक्षा होंगी।
पुनरुत्थान के 5 दिन बाद वह मरुभूमि में पुकारने वाली वाणी, जिसका प्रतिनिधित्व खमीर रहित रोटी के दिनों द्वारा होता है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि एलिया, जिसका प्रतिनिधित्व मिलर और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करते हैं, दोनों ने उस एक के लिए मार्ग तैयार किया जिनके जूते उठाने के योग्य भी वे न थे। पुनरुत्थान पर यीशु ने 40 दिनों के लिए आमने सामने शिक्षा का काल आरंभ किया। वही आमने सामने शिक्षा दानियेल के लिए अध्याय 10 में 22वें दिन आरंभ होती है। वहां इसे 3 चरणों और 3 स्पर्शों के रूप में निरूपित किया गया है, साथ ही बलवंत होने के दोहरे उल्लेख के साथ। 40 दिनों के पूर्ण होने से 5 दिन पूर्व इस्लाम की तुरही की चेतावनी ध्वनित होती है। इस्लाम की चेतावनी का प्रतीक वो गधा था जिस पर मसीह ने यरूशलेम में अपने विजय प्रवेश के समय सवारी की। यरूशलेम की ओर जैतून के पहाड़ की ढलानों से नीचे उतरने से पूर्व उन्होंने सर्वप्रथम अपने चेलों को ये आज्ञा दी कि वे जाकर उस गधे को खोल दें।
ये दर्शन 1845 में दिया गया था, जब एडवेंट के भाई बंधुओं में से बहुत ही कम लोग विश्राम दिन का पालन कर रहे थे, और उनमें से भी बहुत कम ये मानते थे कि उसका पालन इतना महत्वपूर्ण है कि वो परमेश्वर की प्रजा और अविश्वासियों के बीच एक रेखा खींचते। अब उस दर्शन की पूर्ति दिखाई देने लगी है। यहाँ उल्लिखित उस क्लेश के समय का आरंभ का अभिप्राय उन विपत्तियों के उंडेले जाने के समय से नहीं है, वरन उनसे ठीक पहले की थोड़ी अवधि से है, जब मसीह पवित्र स्थान में होंगे। उसी समय जब उद्धार का कार्य समापन पर होगा, पृथ्वी पर क्लेश आएंगे और जातियां क्रोधित होंगी, तो भी उन्हें रोके रखा जाएगा ताकि तीसरे स्वर्गदूत के कार्य में बाधा न पड़े। उसी समय परवर्षा अथवा प्रभु की उपस्थिति से आने वाली ताजगी आएगी, ताकि तीसरे स्वर्गदूत के उच्च स्वर को शक्ति मिले और पवित्र जन उस काल में स्थिर रहने के लिए तैयार हों, जब अंतिम 7 विपत्तियां उंडेली जाएंगी। अर्ली राइटिंग्स 58।
9/11 पर उसने अपने स्वर्गदूतों को गधे को खोल देने की आज्ञा दी, और तत्पश्चात जॉर्ज बुश कनिष्ठ ने उस गधे को रोक लिया। कुरुष प्रथम स्वर्गदूत का प्रतिरूप है, क्योंकि उसी ने प्रथम फरमान की घोषणा की। अतः वो 11 अगस्त 1840 और 9/11 दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, और 9/11 पर राष्ट्रों के क्रोधित होने के रूप में निरूपित इस्लाम को छोड़ दिया गया और फिर उसे नियंत्रित कर रोक दिया गया। उसी समय उत्तरकालीन वर्षा बरसना आरंभ हुई। कुरुश 11 अगस्त 1840 और 9/11 पर इस्लाम के दोनों मार्ग चिन्हों का प्रतिनिधित्व करता है।
3 सप्ताह तक गब्रियल ने अंधकार की शक्तियों से संघर्ष किया, कुरुश के मन पर कार्यरत प्रभावों को निष्फल करने का प्रयत्न करते हुए, और संघर्ष समाप्त होने से पूर्व मसीह स्वयं गब्रियल की सहायता के लिए आए। पारस के राज्य के प्रधान ने मुझे 21 दिन तक रोके रखा, गब्रियल घोषित करता है, परंतु देखो, मीकाएल, जो प्रधान सरदारों में से एक है, मेरी सहायता के लिए आया, और मैं वहां पारस के राजाओं के साथ ठहरा रहा। दानियल 10:13। परमेश्वर की प्रजा के पक्ष में स्वर्ग जो कुछ कर सकता था वो सब किया गया। अंततः विजय प्राप्त हुई। शत्रु की शक्तियों को कुरुश के सब दिनों में और उसके पुत्र कम्बाइसिस के सब दिनों में, जिसने लगभग 7.5 वर्ष राज्य किया, अंकुश में रखा गया। भविष्यद्वक्ता और राजा 791।
साइरस के समय में और 11 अगस्त 1840 को, जब जैसा कि अग्रदूतों ने व्यक्त किया, उस्मानी सर्वोच्चता का अंत हुआ, दूसरे हाय का इस्लाम निरोधित किया गया था। ये संयम 391 वर्ष और 15 दिनों की काल भविष्यवाणी के समापन का चिन्ह था। ये तब आरंभ हुई जब चार स्वर्गदूत, जो चार इस्लामी सुल्तानों का प्रतिनिधित्व करते थे, छठे स्वर्गदूत द्वारा मुक्त किए गए, जो इस्लाम के तीन हायों में से दूसरे हाय का प्रतिनिधि था। 9 अगस्त को इस्लाम ने प्रहार किया और तत्पश्चात उसे निरोधित कर दिया गया, जैसा कि साइरस के इतिहास और 1840 के इतिहास में संयम द्वारा निरूपित है। वे तीनों साक्षी इस्लाम के निरोधन या विमोचन की पहचान कराते हैं और मसीह के विजय प्रवेश के आरंभ में गधे को बंधन से मुक्त किया गया। उसके विजय प्रवेश से पहले गधे का बंधन मुक्त किया जाना उस तुरही संदेश को इंगित करता है जो स्वर्गारोहण से 5 दिन पूर्व आता है। इस्लाम के फिर से मुक्त किए जाने का संदेश, जैसा कि नौगला पर हुआ था और जैसा कि 15 दिन बाद रविवार के कानून जो पिंतकुस्त है पर फिर से मुक्त किया जाएगा, वही वो संदेश है जो मध्य रात्रि की पुकार के आरंभ को चिह्नित करता है। गधे का बंधन मुक्त किया जाना मध्य रात्रि की पुकार के संदेश की घोषणा के आरंभ अथवा अल्फा का चिह्नित करता है, और रविवार के कानून पर जहां मध्य रात्रि की पुकार तेज पुकार में परिवर्तित होती है, इस्लाम पुनः पृथ्वी के पशु पर प्रहार करता है। आधी रात की पुकार की अवधि इस्लाम के एक अल्फा आघात से आरंभ होती है और इस्लाम के एक ओमेगा आघात पर समाप्त होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका पर इस्लाम के आघात बिलाम और उसकी गधी के साक्ष्य में प्रतिरूपित है, जो निस्संदेह गिनती अध्याय 22 में प्रतिपादित है। पृथ्वी के पशु के प्रोटेस्टेंट सींग के रूप में लाओदीकियाई 7वें दिन की एडवेंटिस्ट कलीसिया की परंटी, यशायाह कायरम 22:22 हनारम में, और गणतांत्रिक सींग की परंटी गिनती 22:22 हनारम बाह्य तथा आगे में प्रतिपादित है।
और क्योंकि वो गया था, इस कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का उठा और प्रभु का दूत उसके विरोधी के रूप में मार्ग में खड़ा हो गया। अब वो अपनी गधी पर सवार था और उसके 2 दास उसके साथ थे।
और गधी ने प्रभु के दूत को मार्ग में खड़ा देखा और उसके हाथ में खींची हुई तलवार थी। तब गधी मार्ग से हटकर खेत में चली गई और बिलाम ने उसे मार्ग पर लौटा देने के लिए पीटा। गिनती 22:22-23।
9 अगस्त के समय झूठा भविष्यद्वक्ता बिलाम, जो संयुक्त राज्य और जॉर्ज बुश कनिष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है, उस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा था जिसे उसके पिता जॉर्ज बुश वरिष्ठ ने आरंभ किया था, अर्थात संयुक्त राज्य को उखाड़ फेंकने, और जिसको वो नई विश्व व्यवस्था कहता था, उसे लागू करने के लिए वैश्विकतावादियों के प्रयास में। वैश्विकतावादियों की बाइबली प्रेरणा ये है कि वे परमेश्वर की शेष प्रजा का वध करें, और जॉर्ज बुश कनिष्ठ अपने पिता की उस भविष्य सूचक विरासत के अंत का निरूपण करता है जिसके द्वारा, जैसा कि वो इसे कहता था, नई विश्व व्यवस्था का आरंभ कराया गया था। बुश की नई विश्व व्यवस्था रविवार के कानून के समय अजगर, पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता की त्रिगुग उन्हीं एकता में आकर परिणत होती है, और जॉर्ज बुश कनिष्ठ उस कालावधि के आरंभ का चिन्ह है जिसकी परिणति रविवार के कानून पर होती है, जो मुहरबंदी का समय, पशु की प्रतिमा का परीक्षा काल, प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की प्रथम वाणी द्वारा निरूपित काल और भी बहुत कुछ है। बिलाम की गधी वैश्विकतावादियों के एजेंडा को एक ओर मोड़ देती है, जब तक कि 144,000 के ललाटों पर मुहर न लग जाए।
आसाफ का गीत अथवा भजन। हे परमेश्वर, तू मौन न रह, तू चुप न रह, और हे परमेश्वर, तू निश्चेष्ट न रह, क्योंकि देख, तेरे शत्रु कोलाहल कर रहे हैं, और जो तुझसे बैर रखते हैं सिर उठा चुके हैं। उन्होंने तेरे लोगों के विरुद्ध कपटपूर्ण मंत्रणा की है और तेरे छिपाए हुए जनों के विरुद्ध परामर्श किया है। उन्होंने कहा, आओ हम उन्हें जाति होने से मिटा दें, ताकि इसराइल का नाम फिर स्मरण में न रहे, क्योंकि उन्होंने एक मन होकर साथ परामर्श किया है। वे तेरे विरुद्ध संधिबद्ध हो गए हैं। भजन संहिता 83:1-5।
पद 6 और आगे शत्रुओं की पहचान 10 राष्ट्रों के रूप में करते हैं, जो प्रकाशित वाक्य 17 में 10 राजाओं के रूप में निरूपित है। वहां वे 10 राजा एक ही मन के हैं, परंतु आसाफ कहता है, उन्होंने एक मन होकर सम्मति से परामर्श किया है, वे तेरे विरुद्ध एकजुट हुए हैं। वे 10 राजा अंतिम दिनों का वैश्विकतावादी दुष्ट गठबंधन है, जिन्होंने इसराइल, तेरे गुप्त जन को एक राष्ट्र होने से काट देने का निश्चय किया है। उन 10 राजाओं के उस गठबंधन का कार्य जो पापाई सत्ता को त्रिगुणी एकता के शीर्ष के रूप में ऊंचा उठाते हैं, आत्मिक इज़राइल का नाश करना है जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में छिपे हुए हैं। 9 अगस्त के समय इस्लाम के गधे ने अजगर के मंसूबे को उसकी राह से भटका दिया, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 18 का पराक्रमी स्वर्गदूत अपने हाथ में तलवार लिए उतर आया। तब आंतरिक परीक्षा ये थी कि प्राचीन मार्गों पर लौटा जाए। उसी बिंदु पर प्रथम और द्वितीय दोनों स्वर्गदूतों के मिलरवादी इतिहासों की पुनरावृत्ति प्रकाशित वाक्य 18 के पहले 3 पदों के इतिहास में जिस प्रकार प्रतिपादित है आरंभ हुई। वे पहले 3 पद वे ही हैं जिनके विषय में बहन व्हाइट ने कहा था कि जब न्यूयॉर्क नगर की महान इमारतें गिरा दी जाएंगी तब उनकी परिपूर्ति होगी। 9-11 को प्रकाशित वाक्य 18,123 की पूर्ति हुई और 11 अगस्त 1840 को अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित करने के लिए उतरने वाले प्रथम स्वर्गदूत का जो समानांतर था उसके साथ तब वो दूसरा स्वर्गदूत भी जुड़ गया जिसने बाबुल के पतन की घोषणा की। बिलाम प्रथम स्वर्गदूत का प्रतीक था और बिलाम के साथ उसके 2 सेवक थे जो दूसरे स्वर्गदूत का प्रतिनिधित्व करते थे। झूठे नबी के रिपब्लिक की अपने सींग का निरूपण करने वाले बिलाम के दृष्टांत में बिलाम की इस्लाम के गधे के साथ 2 और मुठभेड़ें होनी थीं। तीसरी मुठभेड़ में गधा बोलेगा और भविष्यवाणी का बोलना रविवार के कानून को चिह्नित करता है। 7 अक्टूबर 2023 को गधे ने फिर प्रहार किया, परंतु आध्यात्मिक आधुनिक महिमामय देश पर नहीं। उसने शाब्दिक प्राचीन महिमामय देश पर प्रहार किया और अब बिलाम और उसका गधा अपनी दूसरी मुठभेड़ में थे।
परंतु यहोवा का दूत दाख बारियों के एक पथ में खड़ा था। एक ओर दीवार थी और दूसरी ओर भी दीवार, और जब गधही ने यहोवा के दूत को देखा तब वो दीवार से आ सटी और उसने दीवार से बिलाम का पांव कुचल दिया। तब बिलाम ने उसे फिर मारा। गिनती 22:24-25।
प्राचीन इसराइल की दाख की बारी लाओदीकियाई 7वें दिन के एडवेंटवाद की दाख की बारी का दर्शन कराती है। वे दोनों ही वाचाजन हैं जिन्हें परमेश्वर की व्यवस्था के अभिरक्षक होने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। ये व्यवस्था दीवार के रूप में प्रतीकित है और दाख की बारी का निर्माण करने वाले तत्वों में से एक है।
मेरी दाख की बारी के लिए और क्या कुछ किया जा सकता था जो मैंने उसमें न किया? फिर जब मैंने ये आशा की कि वो अंगूर उपजाएगी, उसने जमली अंगूर क्यों उपजाए? और अब आओ मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपनी दाख की बारी के साथ क्या करूंगा। मैं उसकी बाड़ हटा दूंगा और वो चरा दी जाएगी। मैं उसकी दीवार ढहा दूंगा और वो रौंदी जाएगी। यशाया 5:5-7।
प्राचीन शाब्दिक इसराइल और आधुनिक आत्मिक इसराइल दोनों ने विद्रोह किया और अपने पवित्र दायित्वों को ठुकरा दिया। 9 दिसंबर से लेकर रविवार के कानून तक एक भविष्य सूचक विषय को एक दीवार द्वारा निरूपित किया गया है। ये भविष्य सूचक विषय संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के भीतर कलीसिया और राज्य के पृथककरण की दीवार के विनाश का है। 9 दिसंबर से लेकर रविवार के कानून ने पेट्रियट एक्ट लागू किया जो संविधान को उलट देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि वही वो दर्शन प्रणाली जो संविधान का मार्गदर्शन करती थी उलट दी गई जब रोमी कानून के वे सिद्धांत जो ये प्रतिपादित करते हैं कि व्यक्ति तब तक दोषी है जब तक वो निर्दोष सिद्ध न हो, अंग्रेजी कानून के उस सिद्धांत से ऊपर स्वीकार कर लिए गए जो ये प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक वो दोषी सिद्ध न हो। 9/11 से लेकर रविवार विधान तक की अवधि में दीवारों के संबंध में भविष्य सूचक संदर्भ निहित है। बिलआम के गधे के समान दीवारों से टकराता हुआ इस्लाम यह इंगित करता है कि इसी इस्लाम का मुद्दा वो भ्रांत तर्क उपलब्ध कराएगा जिसके द्वारा संविधान के अंतर्निहित सिद्धांत उलट दिए जाएंगे। इस भविष्य सूचक अर्थ में बाइबल का एक मिथ्या भविष्य द्वक्ता होने के नाते इस्लाम पशु की प्रतिमा के परीक्षण काल में संयुक्त राज्य को धोखा देता है। जैसे संयुक्त राज्य का मिथ्या भविष्य द्वक्ता विश्व की पशु की प्रतिमा के परीक्षण काल में समस्त संसार को धोखा देता है। सब अक्टूबर 2030 को इस्लाम का गधा प्राचीन शाब्दिक महिमामय भूमि पर आक्रमण किया, और जब गधे को मध्यरात्रि की पुकार की घोषणा से पूर्व छोड़ दिया जाएगा, तब इस्लाम संयुक्त राज्य अमेरिका आधुनिक आध्यात्मिक महिमामय भूमि पर वैसा ही फिर से प्रहार करेगा जैसा उसने 9 अक्टूबर को किया था। दूसरी बार जब बिलाम गदते को मारता है, यह दूसरा स्वर्गदूत है, और दूसरा स्वर्गदूत सदैव द्विगुणन उत्पन्न करता है, जैसा कि दाख की बारियों का एक पथ दो दीवारों से युक्त द्वारा निरूपित है।
और प्रभु का दूत आगे बढ़ा और एक संकर स्थान में खड़ा हो गया, जहां न दाहिनी ओर मुड़ने का कोई कार्य था न बाईं ओर। और जब गधी ने प्रभु के दूत को देखा तो वो बिलाम के नीचे गिर पड़ी। तब बिलाम का क्रोध भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब प्रभु ने गधी का मुख खोल दिया और उसने बिलाम से कहा, मैंने तुझसे क्या किया है कि तूने मुझे ये 3 बार मारा है? गिनती 22:26-28।
जब हम 22वें और 23वें पदों का सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में वही 23वां पद है जहां गधे पर पहली बार प्रहार किया गया है।
और क्योंकि वो गया था, इस कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का उठा और प्रभु का दूत उसके विरोधी के रूप में मार्ग में खड़ा हो गया। अब वो अपनी गधी पर सवार था और उसके 2 दास उसके साथ थे।
और गधी ने प्रभु के दूत को मार्ग में खड़ा देखा और उसके हाथ में खींची हुई तलवार थी। तब गधी मार्ग से हटकर खेत में चली गई और बिलाम ने उसे मार्ग पर लौटा देने के लिए पीटा। गिनती 22:22-23।
झूठा भविष्यद्वक्ता बनने के अनुरोध को स्वीकार करने के कारण बिलाम पर परमेश्वर का क्रोध मत्ती 22 के अंतिम पद में कुतर्क करने वाले यहूदियों के साथ अपने संवाद का समापन करने वाले मसीह के समांतर था। गिनती 22 का पद 23 मत्ती अध्याय 23 के अनुरूप है, और गिनती 22 के पद 24 और 25 मत्ती के अध्याय 24 और 25 के अनुरूप है। गिनती 22 के पद 26, 27 और 28 मत्ती के अध्याय 26, 27 और 28 के अनुरूप हैं।
मत्ती 23 है, पहला स्वर्गदूत है, 24 और 25 दूसरे स्वर्गदूत के अंतर्गत है, और 26, 27 तथा 28 तीसरे स्वर्गदूत के अंतर्गत है। गिनती 22 में पद 23 पहला स्वर्गदूत है, पद 24 और 25 दूसरे स्वर्गदूत के अंतर्गत है, और पद 26, 27 तथा 28 तीसरे स्वर्गदूत के अंतर्गत है। मत्ती वाचा के लोगों पुराने और नए को संबोधित कर रहा है। गिनती संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ होकर तत्पश्चात संसार भर में फैलने वाली रविवार की आराधना पर परमेश्वर की ताड़ना के साधन के रूप में इस्लाम की भूमिका की पहचान कर रही है। तीसरे प्रहार के बाद जब गधी बोलती है, तब बिलाम को अभी अभी जो घटित हुआ था उसका बोध होता है।
तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसने यहोवा के दूत को मार्ग में खड़ा देखा और उसकी तलवार उसके हाथ में खिंची हुई थी। तब उसने सिर झुका लिया और मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तेरे विरोध करने को निकला था, क्योंकि तेरा मार्ग मेरे सामने विकृत है। और उस गदही ने मुझे देखा और 3 बार मुझसे हट गई। यदि वो मुझसे न हटती तो निश्चय अब मैं तुझे मार डालता और उसे जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, क्योंकि मुझे ये न मालूम था कि तू मेरे विरोध में मार्ग में खड़ा है। अब इसलिए यदि ये तेरी दृष्टि में बुरा है तो मैं लौट जाऊंगा। गिनती 22:33-34।
बिलाम झूठे भाई विश्ववक्ता का प्रतिनिधित्व करता है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका है जो रविवार के कानून के समय अजगर के समान बोलता है। रविवार के कानून के समय जब वो प्रबुद्ध होता है, तब वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अब भी बाबुल में हैं, जो तब रविवार के कानून के विषय के प्रति जागृत किए जाते हैं और बाबुल से बाहर बुलाए जाते हैं। मिलर द्वारा अखमीरी रोटी के संदेश का 5 दिवसीय शिक्षण, फिर वो 30 दिवसीय काल जिसमें मसीह अपने याजकों को शिक्षा देते हैं, जो 30 द्वारा निरूपित है, जो गधे के बंधन के खोले जाने का तुरही चेतावनी संदेश तक ले जाता है, जो ध्वज के ऊंचा उठाए जाने से 5 दिन पूर्व होता है, जो 10 कुवारियों के दृष्टांत के बंद द्वार से 5 दिन पूर्व होता है, जो पिंतेकुस्ती रविवार कानून से 5 दिन पूर्व होता है, और वही रविवार कानून झोंपड़ियों के पर्व के 7 दिवसीय काल का आरंभ कराता है, जो रविवार कानून के संकट के दौरान अंतिम वर्षा का पूर्ण उंडेला जाना है, क्योंकि उस अवधि की परीक्षा 7वें दिन के विषय में है। संख्या 5 कुवारियों का प्रतीक है, चाहे वे बुद्धिमान हो या मूर्ख। संख्या 30 याजकों का प्रतीक है, जिनकी पहचान लैव्य व्यवस्था नाम से होती है। संख्या 7 सप्त है, लैव्य व्यवस्था 23 याजकों मलाकी 3 के लेवियों बुद्धिमान कुवारियों और सब की परीक्षा के समय के 144,000 का इतिहास चित्रित करती है। हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।